ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय प्रारंभ किया हमने हमारे पिछले बुधवार के कार्यक्रम में, और इस अध्याय का शीर्षक दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, श्रील प्रभुपाद ने इस अध्याय का शीर्षक दिया है। क्योंकि जैसे हमने पिछले हमारे सेटिंग में ये समझा कि दोनों अध्यायों का प्रारंभ, तीसरे अध्याय का प्रारंभ और चौथे अध्याय का प्रारंभ, दोनों में समानताएं क्या हैं। अर्जुन का प्रश्न तीसरे अध्याय का प्रारंभ और भगवान श्री कृष्ण का उत्तर, ये है चौथा अध्याय, इसकी शुरुआत। तत्पश्चात एक और संबंध हमने तीसरे एवं चौथे अध्याय में देखा कि दोनों में एक तो है अंत तीसरे अध्याय का और प्रारंभ, इससे संबंध। तो भगवान ने तीसरे अध्याय के अंत में काम वासना का विश्लेषण किया और काम वासना जीव के अंदर दिव्य ज्ञान के अभाव के वजह से होती है, और इसलिए ये जो चौथा अध्याय है इसका प्रारंभ भगवान उस शस्त्र से कर रहे हैं जो काम वासना के ऊपर प्रहार के लिए उपयोग में आएगा, और वो है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो यहां पर अर्जुन जो कि शस्त्र नहीं उठाना चाह रहे, शस्त्र अर्थात वेपन, तो अर्जुन शस्त्र नहीं उठा पा रहे या उठाना नहीं चाह रहे, और भगवान यहां पर अर्जुन को शास्त्र का ज्ञान देकर एक अलग प्रकार का शस्त्र अर्जुन के हाथ दे रहे हैं, और वो है दिव्य ज्ञान। तो यहां पर भगवद गीता को इस अध्याय के द्वारा हमें विशेष रूप से समझना है कि हमारे जीवन में जब हमारे प्रतिद्वंद्वी, जो कि हमारे ही हृदय से उनकी शुरुआत होती है, हमारे अनर्थ षडरिपु, ये शत्रु हमारे हृदय के, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार इत्यादि, तो इनके ऊपर इस भौतिक संसार के कोई शस्त्र काम नहीं आने वाले। यदि इनके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है तो शास्त्र रूपी शस्त्र। इसलिए ये चौथा अध्याय जो है वो अब हमें भगवद गीता की सूक्ष्मता में ले जा रहा है। इसलिए दिव्य ज्ञान जो होता है, हमारे शास्त्रों का ज्ञान जो होता है, वो स्थूल स्तर से हमें ले जाकर सूक्ष्म स्तर तक पहुंचाता है। तब देखिए, यदि आप प्रथम अध्याय से लेकर अब तक जो चर्चाएं हुई हैं भगवद गीता में, प्रथम अध्याय, दूसरा, तीसरा, अब चौथा अध्याय, तो प्रथम अध्याय में बहुत स्थूल स्तर पर, ग्रॉस प्लेटफॉर्म पर अर्जुन जो हैं उनके शारीरिक लक्षण दिख रहे हैं, उनको युद्ध क्यों नहीं करना कारण वो दे रहे हैं बहुत ही स्थूल स्तर पर। परंतु दूसरे अध्याय से तीसरा अध्याय और तीसरे अध्याय से अब चौथा अध्याय भगवान अर्जुन को एक ऐसे सूक्ष्म स्तर पर ले जा रहे हैं जहां पर अर्जुन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस स्तर पर जाकर भी मैं युद्ध क्यों मुझे लड़ना चाहिए, यह समझ में आएगा। तो हम भी अर्जुन के पदचिन्हों पर चलते हुए भगवद गीता का श्रवण करें, तो भगवद गीता का श्रवण हमें इस धारणा से करना है कि मुझे अपने स्थूल जीवन से ऊपर उठकर सूक्ष्म जीवन में जीना प्रारंभ करना है। वी हैव टू रेज अवर लाइफस्टाइल फ्रॉम ग्रॉस मटीरियलिज्म टू बिकम मोर सटल एंड अंडरस्टैंड मोर सटल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। तो अब ये समझने के पश्चात जो दूसरा श्लोक है आज का चौथे अध्याय का, वो भी पिछले श्लोक से संबंधित है और इसमें भगवान और विस्तार से बता रहे हैं जो उन्होंने प्रथम श्लोक में इस अध्याय के कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेने हमहता योगो नष्ट परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेने हमहता योगो नष्ट परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेने हमहता योगो नष्ट परंतप। तो श्लोक में भगवान मुख्य रूप से दो मुद्दे समझा रहे हैं अर्जुन को। प्रथम मुद्दा यह है, भगवान कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः कि ये जो ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया, विवस्वान मनु इक्ष्वाकु इत्यादि, जो उन्होंने ये ज्ञान मुझसे प्राप्त किया, ऐसे राजऋषि इनकी परंपरा में ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो जो पहली दो लाइन है उसके अंदर भगवान परंपरा में ज्ञान अर्जित करने का महत्व बता रहे हैं। तो अब प्रश्न अर्जुन ने भगवान से यह पूछा कि यदि आप जोर दे रहे हैं कि यह दिव्य ज्ञान परंपरा में ही प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर आप मुझे डायरेक्टली क्यों सुना रहे हो? आप मुझे किसी राजऋषि के पास क्यों नहीं भेज रहे? वो ज्ञान अर्जित करने के लिए आप मुझे जो जो ऐसे लाइन में राजा हुए हैं, राजऋषि हुए हैं, उनको उनके पास क्यों नहीं भेज? तो उसका जवाब अगले दो लाइन भगवान कह रहे हैं, सकाले ने हमहता योगो नष्ट परंतप। काल के प्रभाव से ये योग, ये दिव्य ज्ञान लुप्त हो गया, नष्ट हो गया। क्योंकि काल के प्रभाव से ये लुप्त हो गया, नष्ट हो गया, इसलिए फिर से पुनः स्थापित करने के लिए मैं आया हूं। तो ये दो मुद्दे हैं आज के श्लोक के। पूरा अनुवाद श्री प्रभुपाद का इस प्रकार से है, यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा नष्ट हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में राजर्षियों की चर्चा की और इस श्लोक में भी भगवान राजऋषियों के विषय में ही बता रहे हैं। तो ये राजऋषि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इस पर इसको पकड़ के रखना, आज पूरे सेमिनार में हम इस पर अच्छी से चर्चा करेंगे, राजऋषि। तो आज के हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध, परंपरा शब्द की व्याख्या, इस ज्ञान को राजऋषियों ने प्राप्त किया, भगवान जो बोले हैं आज। काल के प्रभाव से यह ज्ञान नष्ट हो गया और आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को एक बहुत ही विशेष नाम से पुकारा है, परंतप, बहुत ही विशेष नाम से पुकारा है। तो पिछले श्लोक से संबंध, पिछले श्लोक में हमने ये देखा कि भगवान ने इस भगवद गीता के ज्ञान की शुरुआत के विषय में बताया, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। और आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो श्रोता होते हैं, प्रामाणिक श्रोता होते हैं भगवद गीता के, जैसे कि सूर्यदेव, जो प्रामाणिक श्रोता होते हैं वो इस ज्ञान को पारंपरिक तरीके से दूसरों को देते हैं। तो देखिए, इसमें समझने की बात यह है कि कई बार जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है वो व्यक्ति प्रामाणिक होगा, जो ज्ञान दिया जा रहा है वो ज्ञान भी प्रामाणिक होगा। परंतु भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि श्रोता जो सुन रहा है उसको भी प्रामाणिक होना चाहिए। द स्पीकर इज बोनाफाइड, द मैसेज इज बोनाफाइड, द रेसिपिएंट ऑल्सो हैज टू बी बोनाफाइड। हाउ, यहां पर बता रहे हैं कि कैसे समझ में आएगा कि वो श्रोता प्रामाणिक रहा है कि नहीं, जब वो परंपरा से उसी ज्ञान को यथारूप दूसरों को देगा, वो है प्रामाणिक श्रोता। तो इसलिए महत्व बता रहे हैं परंपरा का। क्यों महत्व परंपरा का बता रहे हैं? क्योंकि भगवान कुरुक्षेत्र की रणभूमि में तो डायरेक्टली अर्जुन को दे रहे हैं, अर्जुन के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि डायरेक्टली भगवान से सुन रहे हैं अर्जुन। परंतु भगवान अर्जुन को सुनाते हुए हम लोगों की चिंता कर रहे हैं कि 2014 ये ज्ञान यथारूप कलयुग के निवासियों को कैसे प्रामाणिकता से मिलेगा। तो ये परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, इसके विषय में भगवान ने आज के श्लोक में बताया। तो सबसे पहले ये जो परंपरा शब्द है, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः, तो परंपरा शब्द अर्थ क्या है? तो इस शब्द का विभाजन हम तीन तरीके से कर समझेंगे। सरल है समझना, परम, पर और आ, इस प्रकार से इसका विभाजन हुआ है। तो परम, ये शब्द तो आसान है समझना, श्रेष्ठ। पर का अर्थ है व्यक्ति और आ का अर्थ हमारे आचार्य कहते हैं समीप जाना या सम्मुख। समीप समझ लिया आप लोग? निकट जाना, निकट समझ, पास जाना, क्लोज। सम्मुख का अर्थ है फेस टू फेस, मुख फेस, सम्मुख का अर्थ है फेस टू फेस। देखो संस्कृत के शब्द कितनी बारीकी से इस शब्द की रचना की गई है कि कहीं पर भी कोई लूपहोल ना रहे, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण यह शब्द है परंपरा। ये प्रामाणिक ज्ञान जिस विधि से नीचे हमें मिलने वाला है, तो वो जो शब्द है वो शब्द कितना परफेक्ट होना चाहिए कि उसके अंदर कोई अपना अर्थवाद ना कर पाए। तो पूरे शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ व्यक्तियों के समीप एवं सम्मुख जाकर लिया गया दिव्य ज्ञान। तो यहां पर महत्वपूर्ण जो भाग है इस शब्द का वो है परम। अब समीप जाकर तो कोई ट्यूशन में भी मैथ्स टीचर के समीप बैठकर ज्ञान लेता है, या आप ऐसे भी लोकल ट्रेन में, बस में, रिक्शा में किसी के समीप बैठे हो, वो भी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान दे देगा, कांदा का भाव क्या चल रहा है। तो उसे परंपरा नहीं कहेंगे। कोई बोले मुझे परंपरा में ज्ञान मिला है, कांदा का भाव क्या चल रहा है, नहीं। सबसे पहले जिससे वो ज्ञान व्यक्ति ले रहा है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। तो अब अगला प्रश्न, ये श्रेष्ठ कौन है भाई? श्रेष्ठ की परिभाषा क्या है? आपको याद है तीसरे अध्याय में हमने श्रेष्ठों की परिभाषा सुनी थी। तो श्रेष्ठ, अब उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे कि ये जो परंपरा में परम शब्द है श्रेष्ठ, इसका अर्थ क्या है। तो श्रेष्ठ के तीन अर्थ या तीन अर्थों से बनता है ये शब्द श्रेष्ठ। श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जिसने अपने से श्रेष्ठतर व्यक्ति से ज्ञान लिया हुआ। ये नहीं कि मेरे अनुसार जीवन ऐसा जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत से हैं कलयुग में जो अपनी गीता लिख रहे हैं और ये भी कहते हैं कि वही भगवद गीता जो 5000 साल पहले या उससे पहले विवस्वान को जो भगवान ने दी, वही भगवद गीता अब मुझसे आ रही है, मैं दे रहा हूं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जिसने उससे श्रेष्ठ व्यक्ति से श्रवण किया हो। कैसा श्रवण किया हो? यथारूप एज इट इज श्रवण किया हो। ये पहला मुद्दा है, कोई व्यक्ति यदि श्रेष्ठ है। तो अब ये हम लोग इतना डिटेल में जाकर इस वर्ड को पूरा डाइसेक्ट कर क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि विशेष रूप से भारत में यदि हमें भगवद गीता का ज्ञान सही तरीके से लेना है तो भगवान ने जो शब्द बोले हैं परंपरा, परंपरा का अर्थ क्या है, परम, परम का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ क्या है, पूरा पहचान ले। जब हम पूरा पहचानेंगे तब जाकर, क्योंकि इस भौतिक संसार में भगवान ने हमको जो बुद्धि दी है, भगवान चाहते हैं कि हम उस बुद्धि का सदुपयोग करें, सही इस्तेमाल कर सही ज्ञान लें। क्यों हम इतना जोर से इस बात पर महत्व दे रहे हैं? क्योंकि यह देखा गया है कि गीता का ज्ञान उसको छोड़कर हर एक वस्तु के पीछे हम इतना जांच परखते हैं। एक साबुन भी खरीदना है तो उसको 15 मिनट तक आगे पीछे देखेंगे कि उसके अंदर क्या एक्सपायरी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, कौन सी सुगंध है उसके अंदर, कितनी बड़ी भट्टी है, कब तक चलेगी, कितना मैं रोज 3 बार घिसूंगा तो कब तक चलेगी वो। एक टूथपेस्ट खरीदते हैं, टूथब्रश खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, हर चीज के लिए हम लोग कितना जांच परखते हैं। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान सुनाओ, जिसको सुनाना है सुनते रहेंगे। तो इसलिए अपने से श्रेष्ठतर व्यक्ति से ज्ञान जिसने लिया। अच्छा, ज्ञान तो लिया परंतु समझा कि नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है, नहीं तो खाली वन वे ट्रैफिक था, या एक कान से ज्ञान गया दूसरी कान से उसी रफ्तार से बाहर चला गया। तो ज्ञान श्रेष्ठ व्यक्ति से उसने लिया, जैसे कि धृतराष्ट्र, भगवत गीता एज इट इज धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाई लाइव, लाइव टेलीकास्ट, लाइव कमेंट्री, कौन? धृतराष्ट्र सुन रहा था। तो अर्जुन ने भी गीता सुनी, धृतराष्ट्र उसने भी गीता संजय के मुखारविंद से सुनी एज इट इज। क्या हुआ दोनों में अंतर? धृतराष्ट्र पूरी गीता सुनने के बाद भी इस अपेक्षा में था कि मेरा लाडला दुर्योधन जीतेगा, जबकि भगवत गीता के अंत में संजय ने धृतराष्ट्र को कह दिया, वो श्लोक भगवान का श्लोक नहीं है, कहा हुआ अंतिम श्लोक, संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहां पर भी योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन पार्थ धनुर्धर हैं वहां पर श्री विजयोर भूतिर नीतिर मतिर मम, ये सब कुछ वहां पर मौजूद है, ये लोग तो मैच फिक्स्ड है, जीतने ही वाले हैं। फिर भी धृतराष्ट्र उसकी आसक्ति गई नहीं। तो श्रवण तो किया परंतु समझा कितना, यह है महत्वपूर्ण प्रश्न, दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो ये जो दूसरी क्वालिफिकेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उस परम तत्व को जानने वाला, जैसे श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद को कई बार लोग अंटशंट प्रश्न पूछते थे कि बताओ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में कितने खिड़कियां हैं। न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, तो एक व्यक्ति, आप गुरु हैं बताओ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां। तो गुरु का अर्थ ये नहीं कि वो गूगल है, गूगल कि उसमें टाइप करो बताओ भाई कि मुझे गैस हो रही है, बताओ गुरुजी बताओ गैस हो रही है, क्या करूं। तो इसलिए परम तत्व को जानने वाला, अब इससे भी महत्वपूर्ण, अब देखो एक एक कर जो ये तीन योग्यताएं श्रेष्ठ व्यक्ति की बताई गई, तो सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं अपने उदाहरण से सिखाने वाला, केवल बोलने से नहीं अपने उदाहरण से जो सिखाए वो है श्रेष्ठ व्यक्ति। तो जो व्यक्ति जिसने अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति से श्रवण किया है, श्रवण कैसा किया, परम तत्व को उसने जाना समझा, और उसकी परीक्षा कैसे ली जा सकती है कि उसने परम तत्व को जाना है समझा है, वो जब अपने जीवन में उतारता है और अपने जीवन में उस भगवत गीता को जीकर दूसरों को सिखाता है। जैसे कि एक व्यक्ति, उनको प्रभुपाद के पास लाया गया और उनका परिचय दिया गया कि ये व्यक्ति 45 मिनट में पूरी भगवत गीता कंठस्थ इनको है वो सुना सकते हैं, 45 मिनट में पूरी गीता, हम एक अध्याय कितना हमको टाइम लगता है, वो भी सामने सब आते रहना चाहिए, एक स्लाइड बदला नहीं तो फिर सब चुप हो जाते हम लोग, ये बिना देखे पूरी भगवत गीता इसको कंठस्थ, तो प्रभुपाद के सामने लाया गया, प्रभुपाद दिस जेंटलमैन ही कैन रिसाइट भगवत गीता एंटायर इन जस्ट 45 मिनट्स। प्रभुपाद ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, कैन यू लिव भगवत गीता फॉर 5 मिनट्स? इट्स वेरी नाइस यू कैन रिसाइट गीता इन 45 मिनट्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कैन यू लिव इट, Can you live it even for 5 minutes? That's the million-dollar question. तो इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जिन्होंने अपने उदाहरण से भगवद गीता को जिया और दूसरों को सिखा रहा। तो गुरु परंपरा, अब जो ये टर्म प्रभुपाद ने अपने पुस्तकों में इस्तेमाल किया है गुरु परंपरा, उसका अर्थ ये है श्रेष्ठ व्यक्तियों के समीप एवं सम्मुख जाकर लिया गया दिव्य ज्ञान। तो अब यहां पर समीप और सम्मुख इसको कैसे समझे? हो सकता है कि हमारे पास साधन न हो कि हम समीप फिजिकली समीप जा सकें या फेस टू फेस जाकर श्रवण कर सकें उस दिव्य ज्ञान का। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि समीप और सम्मुख का अर्थ यह है कि जैसे कोई व्यक्ति जब किसी के निकट जाता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि दिस पर्सन इज वेरी क्लोज टू मी, अंग्रेजी का एक लाइन है दिस पर्सन इज वेरी क्लोज टू मी, क्या मतलब हुआ इसका? फिजिकली नहीं हो सकता है, वो कहीं दूर दूर देश बैठा हो, लेकिन पिता बोलता है कि दिस पर्टिकुलर सन ऑफ माइन इज वेरी क्लोज टू मी। हृदय से रिश्ता कहां से है? हृदय से है। फिजिकली उसके क्लोज नहीं होगा वो, परंतु हृदय से जो अपनापन है, जो क्लोजनेस है, उसको कहते हैं समीप। या सम्यक रूप से उस व्यक्ति के निकट जाना, उस व्यक्ति के समक्ष जाना। सम्यक का अर्थ है कंप्लीटली, और कंप्लीटली कब होता है? जब हृदय से। तो यहां पर परंपरा ये जो शब्द है इसको यदि हम विश्लेषित कर समझें, इसका एक एक अंग इसके अनुवाद को समझे, तो अर्थ ये है कि वो श्रेष्ठ व्यक्ति जिसकी परिभाषा हमने समझी, उस श्रेष्ठ व्यक्ति से दिव्य ज्ञान कैसे लेना है? हृदय से, समीप सम्मुख, क्योंकि ये ज्ञान जब उसके हृदय से उस शिष्य के हृदय में जाएगा तब जाकर वो सर्किट कंप्लीट होगा, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का एक सेमिनार मैं दिया था तो उसके अंदर एक मुद्दा है, इफ यू स्पीक जस्ट फ्रॉम योर लिप्स, केवल बहुत आर्टिस्टिक तरीके से कोई बोलता है, बोलने में बहुत माहिर है, इफ यू स्पीक जस्ट फ्रॉम योर लिप्स इट विल सिंपली हिट द ईयर्स। कनेक्शन क्या है लिप्स का? कानों के साथ। If you speak just from your intellect, it will simply hit the intellect of the audience. But if you speak from the heart, it will enter the heart. It might not be very articulate, it might not be very intellectual, but if you are speaking from the heart means with purity. तो यहां पर परंपरा में भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो राजऋषि हुए ये बहुत बड़े बड़े कथाकार हुए थे, ये कोई कथाकार नहीं थे बड़े बड़े, ये कोई सप्ताह नहीं देते थे, परंतु प्रामाणिक थे। और इनकी प्रामाणिकता क्या थी? एज इट इज ये ज्ञान अपने हृदय से देते थे, जिसको देते थे वो व्यक्ति अपने हृदय से ये ज्ञान लेकर अन्यों को हृदय में देता था। और हृदय में जाने के पश्चात कैसे समझ में आता है कि उसके कार्यों में, उसकी इंद्रियों के द्वारा वो ज्ञान प्रदर्शित हो उसके कर्मों में, इसको कहते हैं पारंपरिक ज्ञान। तो हमारे शास्त्रों में अब ये जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, गुरु जो हैं, इनके क्वालिफिकेशंस बताए हैं। सबसे पहला क्वालिफिकेशन, ही मस्ट कम इन अ बोनाफाइड संप्रदाय। परंपरा या संप्रदाय, इसको सिनोनिम्स बोलेंगे हम। संप्रदाय का अर्थ है सम्यक रूप से जो प्रदान करता है। सम्यक का अर्थ है कंप्लीट, प्रदान करता है, देता है। तो कंप्लीटली जो देता है या निस्वार्थ भाव से जो देता है वो है संप्रदाय में प्रामाणिक गुरु, या उसको कहेंगे संप्रदाय। तो सबसे पहली योग्यता कि वो एक प्रामाणिक संप्रदाय का गुरु होना चाहिए। He must have controlled his six urges, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम च शिष्यात। श्रीपाद रूप गोस्वामी श्लोक में कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये छह, उसके अंदर जो वेग हैं, इन छह वेगों को जिसने कंट्रोल कर लिया, सबसे पहला वेग है वाचो वेग, बोलने का वेग। विशेष रूप से कलयुग में चुप रहना बहुत बड़ी तपस्या है, और ये जो अंदर अर्ज है, वेग है कि कुछ ना कुछ बोलते रहना किसी को, कीप टॉकिंग। आजकल सेलफोन के एडवर्टाइजमेंट्स किस प्रकार से होते हैं, कीप टॉकिंग, टॉक मोर, व्हाट्सएप क्या है, कुछ उसके जीवन में हो भी नहीं रहा है, व्हाट्सएप भाई क्या चल रहा है बताओ तो कुछ, और क्या आदान प्रदान होता है फिर, कुछ बोलने के लिए तो है नहीं कलयुग में, कुछ सब्सटेंशियल बोलने के लिए तो है नहीं। तो मैंने छींक मारी है व्हाट्सएप में, मैंने आज 3 बार छींक मारी, तूने, तो वाचो वेगम, इसको बोलते हैं वाचो वेगम, बोलते रहना, बोलते रहना। तो जिसने, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि यदि मुखारविंद से आप भगवान श्री कृष्ण की वाणी या उनसे संबंधित जो किसी के जीवन में परिवर्तन लाए, यदि वो वाणी आप बोल सको तो मुंह खोलो, नहीं तो चुप रहो, बहुत भला होगा समाज का। तो प्रभुपाद के अनुसार साइलेंस, साइलेंस का अर्थ है टू स्पीक ओनली दैट विच इज बेनिफिशियल, विच इज ट्रूथफुल, विच इज प्लीजिंग, टू स्पीक दैट, दैट इज द ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। एक श्लोक है पूरा, अनुद्वेगम करम वाक्यम प्रियम हितम, ये सारे जो गुण बताए गए हैं कि वचन कैसे होने है। तो ये जिसने इसके ऊपर नियंत्रण कर लिया है वो है प्रामाणिक गुरु। ये पहला वेग, वाचो वेगम मनस, जिसने अपने मन के ऊपर नियंत्रण किया है, न केवल अपने जिह्वा के ऊपर, वचनों के ऊपर या वाक शक्ति के ऊपर, परंतु अपने मन के ऊपर। क्रोध वेगम, तीसरा वेग है क्रोध, क्रोध को जिसने अपने नियंत्रण में रखा है वो है प्रामाणिक गुरु। फिर जिह्वा का वापस से उल्लेख होता है श्लोक में, क्योंकि जिह्वा के दो कार्य हैं। एक कार्य है या तो जिह्वा कुछ निकालती रहती है बार शब्दों के रूप में, यदि उसका मौका ना मिले तो अंदर डालते रहो जिह्वा से। सो टंग, इसलिए कहते हैं तार मध्य जिह्वार अति लोभमय सुदूरमति, कि जितनी हमारी इंद्रियां हैं उन सारी इंद्रियों में अति लोभमय, सबसे ज्यादा लोभी ये जिह्वा है। क्यों और कैसे, अब देखिए हमारी आंखें दो हैं, दो आंखें हैं, काम एक है देखना, ऐसा नहीं कि एक आंख देखती है दूसरा आंख और कुछ करती रहती है, ऐसा नहीं एक आंख दूसरे आंख को बोलती है भाई तू देखती रहे मैं थोड़ा खा के आती हूं, नहीं, दोनों का काम एक ही है, दो आंखें हैं, काम एक, देखना। दो कान है, दोनों के काम क्या है? एक ही काम है, सुनना। ये भी सुनता है, ये भी सुनता है। कई बार एक सुनता है, दूसरे से बोलता है तेरे तू खुला रख, वहां से निकालना है मुझे। कलयुग में ज्यादातर यही होता है, दोनों की मिली भगत ये होती है। एक बोलता है कि मैं अंदर डालूंगा, तू वहां से दरवाजा खोल के रखना। तो दो कान हैं, दोनों का काम क्या है? सुनना। दो नथुने हैं हमारे, नॉस्ट्रिल्स, इन दोनों का भी काम क्या है? सूंघना। लेकिन एक जिह्वा है और इसके दो काम हैं। इसलिए तार मध्य जिह्वार अति लोभमय है सुदूरमति। एक हर समय बोलते रहना बक 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 बक, नहीं तो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। तो इसलिए जिसने उस वो जो जिह्वा का वो अंग है खाने का, उसके ऊपर नियंत्रण रखा है, वो एक प्रामाणिक गुरु है। और फिर उदर उपस्थ, जिसने अपने भूख के ऊपर नियंत्रण रखा है, और उपस्थ जिसने यौन सुख सेक्स लाइफ के ऊपर नियंत्रण रखा है, वो है। तो ये है छह अर्जिस, वाचो मन क्रोध जिह्वा उदर उपस्थ वेगम। इन छह वेगों के ऊपर जिसने कंट्रोल कर लिया, सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम च शिष्यात्, वो पूरे पृथ्वी में शिष्य बना सकता है। और जिसने इन वेगों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, बेटर है सीखे किसी से कि कैसे कंट्रोल करना है, वो गुरु के पद पर जाने लायक नहीं है। तो ये दूसरा क्वालिफिकेशन। तीसरा, ही मस्ट हैव रियलाइज्ड द कंक्लूजन्स ऑफ द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। रियलाइज्ड कि जो शास्त्रों का सार है, शास्त्रों के सार का साक्षात्कार जिसने किया है, वो है गुरु। हो सकता है कि उनको पूरे शास्त्र के सारे श्लोक कंठस्थ न हो, परंतु जिन्होंने सारग्राही, जिन्होंने सार को अपने जीवन में समझकर उसका साक्षात्कार किया है, वो है प्रामाणिक गुरु। और अंततः उनको आचार्य भी कहते हैं। आचार्य का अर्थ है आचरति, अपने आचरण में जो कुछ उन्होंने साक्षात्कार लिया है शास्त्रों के उस सार का, उसे अपने जीवन में वो उतार कर दूसरों को उस उदाहरण से सिखाते हैं, वो है गुरु या आचार्य। तो इसलिए अब ये बहुत क्लियर हो गया कि भगवान जिस गुरु परंपरा के विषय में कह रहे हैं, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। हु कैन सिट ऑन द पोजिशन ऑफ गुरु, हियर इट इज वेरी क्लियरली मेंशन। अब ये श्लोक इसी अध्याय का 34वां श्लोक, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। जिसके अंदर भगवान फिर से ये दिव्य ज्ञान कैसे परंपरा से, या जो तत्वदर्शी हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, उनसे कैसे ग्रहण करना है, यहां पर इस श्लोक में भगवान क्वालिफिकेशंस दे रहे हैं डिसाइपल। इसका जो पहला स्लाइड था, हमने किसके क्वालिफिकेशंस पढ़े? गुरु के। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं डिसाइपल के क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इवन द डिसाइपल हैज टू बी क्वालिफाइड। तो बहुत सुंदर तरीके से तीन लक्षण बताए हैं कि जो शिष्य गुरु के शरणागत हुआ है प्रामाणिक तरीके से, उसके तीन लक्षण भगवान ये बताए हैं, प्रणिपातेन परिप्रश्न और सेवया। तो प्रणिपात का अर्थ है नम्रता, सेवया का अर्थ है विनम्रता। दोनों में क्या अंतर है? एक है नम्र भाव, प्रणिपात का अर्थ है सबमिशन, इंग्लिश में उसको प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है सबमिसिवली, सबमिशन, कि हां मैं गुरु के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करने आया हूं। विनम्रता का अर्थ है कि अब उस गुरु की सेवा उस नम्र भाव से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? भगवान ने यहां पर भी बहुत ही कैटेगोरिकली बताया है कि प्रणिपात भी होना चाहिए, सेवया भी होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, बेटा पिताजी से कहता है, पिताजी मैं आपको बहुत मानता हूं, बहुत मानता हूं मैं आपको। पिताजी कहते हैं अच्छा बेटा एक गिलास पानी लाना। पिताजी आपने सुना नहीं, मैं मानता हूं आपको, आदर करता हूं आपका, बेटा लेकिन मुझे प्यास लगी, पानी तो लाए। अरे पानी कहां बीच में आ रहा है, मैं बोल रहा हूं मैं आपको मानता हूं, सुनाई नहीं दे रहा आपको। तो केवल बोलना कि गुरुजी आप मेरे गुरुजी हैं, मैं आपका शिष्य हूं, गुरुजी दंडवत, गुरुजी नमस्कार, नहीं तो कलयुग में तो आजकल क्या होता है, पहले चमत्कार फिर नमस्कार। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो नम्र भाव को हमें सेवया, सेवा के द्वारा, और सबसे पहली सेवा गुरु की क्या है, जो गुरु ने ज्ञान दिया है उसको अपने जीवन में उतार कर जीना, वो सबसे पहली सेवा है गुरु के प्रति। और देखिए इन दोनों के बीच में, प्रणिपात और सेवया के बीच में भगवान ने परिप्रश्न शब्द, होता क्या है कलयुग में, कलयुग की विशेषता क्या है, ना तो विनम्रता है ना नम्रता है, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हाँ तो क्वेश्चन कैसे होते हैं, एकदम एग्रेसिव क्वेश्चन, बता भगवान है कि नहीं, देखा है कि नहीं भगवान को, बता रहा है भगवान, भगवान के बारे में ऐसे आते हैं लोग पूछने के लिए। फर्स्ट शो मी गॉड देन आई इवन लुक इन योर डायरेक्शन। तो उस भाव में जैसे कि यदि कोई भौतिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान तो छोड़ दीजिए, भौतिक ज्ञान भी अर्जित करना चाहता है। जैसे हमने एक किस्सा बताया था, एक व्यक्ति बंबई में, मैं भगवत गीता पर एक क्लास दे रहा था स्टूडेंट्स के लिए, तो वो ऐसे ऐसे अनशन कि हाउ कैन आई बिलीव इन दिस बुक, यू आर होल्डिंग दिस गीता, हाउ कैन आई बिलीव इन दिस बुक, इट्स जस्ट अ बुक, केवल किताब है। तो मैंने पूछा भाई तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, स्टूडेंट हो ना, बताया उसने ऐसे ऐसे मैं ये कॉलेज में पढ़ता हूं, UDCT इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूं। तो वहां पर तुम्हारे प्रोफेसर किताब से ही तो तुमको पढ़ाते हैं ना, उनको पूछा कभी, ये भी तो किताब ही है, कहीं छपी है, पन्ने ही तो है इसके अंदर, उसके बारे में कभी प्रश्न नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि भैया उसको प्रश्न पूछेंगे तो बाहर निकाल लेगा, जा तू बाहर, घर जा। और वहां सब निकाल दिया जाएगा तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे, तो झक मारकर वहां पर चुपचाप बोलो प्रोफेसर साहब क्या बोल रहे हैं, अच्छा गुस्सा आ रहा है जो भी आ रहा है, लेकिन वहां पे बैठ के, लेकिन भगवत गीता जैसे सामने आई क्यों मैं विश्वास करूं इसके ऊपर। तो प्रश्न, तो ऐसे ऐसे प्रश्न, और कई बार इतने साल प्रचार करने के बाद समझ में आ जाता है कि लोग जब आकर प्रश्न पूछते हैं तो उनके प्रश्नों से समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति को कौन सा दिव्य ज्ञान अर्जित करना है, या जो भी दिव्य ज्ञान थोड़ा बहुत लोगों के अंदर है उसको निकालना है बाहर। तो इसलिए भगवान ने उचित प्रश्न, अच्छा परिप्रश्न का सही अनुवाद क्या है, उचित प्रश्न। ये नहीं कि भगवान ने भीम को क्यों नहीं सुनाई गीता, भीम को सुना देते तो पूछता मुझे क्यों नहीं सुनाई। इसलिए एक मुहावरा है, कहावत है, कलयुग में स्थिति ऐसी है, गुरु चोर चंडाल चेला, नरक में जाए ठेलम ठेला। ये कॉम्बिनेशन है। एक बार एक गुरु शिष्य, वो लोग अपनी कुटी में जंगल में रह रहे थे, तो गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, रात का समय था, शिष्य को कहा कि वत्स ऐसा करो, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो अपने कपड़े सूख रहे हैं बाहर, तो कपड़े ले आओ। तो शिष्य कहता है, गुरुजी हुई नहीं ना अभी तक, हुई तो नहीं है बारिश, अपनी जो बिल्ली है वो शरीर झड़काते हुए जब अंदर आएगी तो समझ में आएगा कि छींटे पड़ने लगे हैं, अभी से क्यों उठने की जरूरत है। तो गुरुजी भी सोचे ठीक है, अच्छा बत्ती तो बुझा दे, रात का समय अभी लालटेन जल रही, उसको तो बिता, गुरुजी आंख बंद कर लो, अंधेरा हो जाएगा, बत्ती क्यों बुझानी है। तो गुरुजी भी सोचने लगे, ले दे के कौन शिष्य मिला है मुझे। तो गुरुजी ने पूछा, अरे दरवाजा तो बंद कर, उसको तो बंद करने के लिए उठना पड़ेगा। तो शिष्य बोलता है, गुरुजी दो काम तो मैंने कर दिए, आप एक नहीं कर सकते। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं गुरु चोर चंडाल चेला, नरक में जाए ठेलम ठेला। तो इसलिए गुरु की योग्यता के साथ शिष्य की योग्यता, वो भी सही तरीके से भगवद गीता में बताई गई है। अब पद्म पुराण में जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं, जिनमें से भगवान ने ये ज्ञान राजऋषियों को या उस संप्रदाय के जो प्रामाणिक प्रमुख व्यक्तियों को देखकर शुरुआत जिसकी की, तो श्री संप्रदाय लक्ष्मी देवी से प्रारंभ हुआ यह संप्रदाय, जो कि प्रामाणिक, जिन्होंने भगवान श्री विष्णु से ज्ञान अर्जित किया। रुद्र संप्रदाय ये एक प्रामाणिक संप्रदाय, भगवान शिवजी से ये संप्रदाय प्रारंभ हुआ, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान अर्जित किया। कुमार संप्रदाय, ये चार कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र, और इनकी भी शुरुआत भगवान, तो ये सारे संप्रदायों की शुरुआत भगवान से हुई है, ये जान लेना। और भगवान ने प्रामाणिक व्यक्तियों को देखते हुए उन संप्रदाय में देश काल पात्र के अनुसार ये ज्ञान उनको दिया। और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें श्रील प्रभुपाद ने हमें ये ज्ञान दिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रील प्रभुपाद द्वारा शुरू किया गया, ये कौन से संप्रदाय में स्थित है, ये संप्रदाय में। तो श्रील प्रभुपाद जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये नाम तो उन्होंने संस्था को दिया, परंतु इसमें जो ज्ञान वो पारंपरिक तरीके से इस गुरु शिष्य परंपरा में, जो कि भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ होकर ब्रह्मा जी, इसलिए ब्रह्म मध्व, फिर नारद मुनि, मध्वाचार्य, सॉरी व्यासदेव, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान श्री कृष्ण फिर से इस कलयुग में इसी संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली, और फिर बाकी आचार्य आते हुए जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद। तो भगवद गीता यथारूप एज इट इज में आप यदि पढ़ोगे तो पूरी लिस्ट श्रील प्रभुपाद ने दी है, कुछ 32 गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ हुए। आप लोग गीता को जब खोलोगे तो पहले के पन्नों में प्रभुपाद ने पूरे इन 32 गुरुओं की लिस्ट दी है कि कैसे परंपरा में ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से हमें श्रील प्रभुपाद ने ये ला कर दिया। तो उदाहरण दिया गया है कि वो ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव, इमं विवस्वते योगम, इन सब राजऋषियों को दिया, तो ये हमें एज इट इज कैसे प्राप्त हो, कई बार शंका होगी कि होता ना चाइनीज विस्पर, सुना ना चाइनीज विस्पर, कि आप किसी के कान में कुछ कहो, दसवें आदमी के कान में और कुछ सुनाई देगा। तो ये प्रश्न कि क्या ये चाइनीज विस्पर तो नहीं हो जाएगा ये परंपरा जो बोल रहे हैं आप। तो उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक दीप से आप दूसरा दीप जलाते हो, तो दोनों में उसी समान शक्ति होती है अंधकार को दूर करने की, परंतु सबसे पहला दीप कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण का। तो इसलिए हमने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि ये जो दीप का उदाहरण है, इसको भी लोग तोड़ मरोड़ के बोल देंगे कि अब मैं हूं ना मैं दीप, मुझसे सब जलेंगे, जितने जलेंगे मुझसे जलेंगे। अब कॉपीराइट्स ऑफ दिस नॉलेज आर ऑलवेज विथ कृष्णा, पेटेंट बोलते ना, वही उनका ही है वो, उसको ही एज इट इज प्रेजेंट कर हम लोग। या ये कह सकते हैं कि जो गुरु शिष्य परंपरा वो क्या है? फ्रेंचाइजी है। कॉपीराइट्स भगवान के पास, और उसके लिए श्लोक भी है। कॉपीराइट का श्लोक है, गीता का ही श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। I am seated in everyone's heart and from me comes remembrance, knowledge and forgetfulness by all the Vedas. I am to be known, indeed I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. कितनी बार भगवान ने I am कहा? केवल भगवान ही उनके पास राइट है इतनी बार बोलना कि ये शास्त्र जो हैं ये मुझसे आए हैं, मैं इनका स्रोत हूं और इन शास्त्रों के द्वारा मुझे ही जाना जा सकता है। तो ये श्लोक अगर हम आज की भाषा में कहें तो 15.15 है क्या? कॉपीराइटेड कृष्णाज नॉलेज, नो डुप्लीकेशन, पूरा भगवान श्री कृष्ण ने जो इस शास्त्रों के बारे में सब कुछ कह दिया, नो क्वेश्चंस, नो एम्बिग्यूटी। अब आगे भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं, इमम राजर्षयो विदु, अर्थात इस ज्ञान को राजर्षियों ने प्राप्त किया। अब देखिए भगवान बहुत ही सावधानी से अर्जुन को पिछले श्लोक में, आज के श्लोक में राजऋषि इसके बारे में कह रहे हैं। राजऋषि का अर्थ क्या है? वो राजा जिन्होंने ऋषियों से सुना, एक अर्थ हुआ राजऋषि, और वो राजा जिनका जीवन एक ऋषि के समान उन्होंने जिया, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्रश्न अब ये है कि श्रीमद् भागवत में ये वर्णन आता है कि भगवान ने सबसे पहले सृष्टि जब हुई, सृष्टि के शुरुआत में भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान, वो बच्चों को थोड़ा शांत कर सकते हैं, आवाज आ रही है, यहीं से आ रही है ना। अच्छा, तो सृष्टि के शुरुआत में भगवान ने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। तो प्रश्न है कि गीता में भगवान ब्रह्मा जी का नाम क्यों नहीं बोले? सूर्यदेव का नाम कोई बोल रहे हैं, इक्ष्वाकु, मनु, इनका नाम क्यों बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी का नाम क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहां पर भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं कि क्योंकि ब्रह्मा जी वो क्षत्रिय नहीं, वो ब्राह्मण है, परम ब्राह्मण, सबसे बड़े ब्राह्मण ब्रह्मा जी। और इनके विषय में श्रीमद् भागवत में एक कथा है कि जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उनको जब वेद ज्ञान भगवान ने दिया, तो दो असुर आए, मधु और कैतब। मधु और कैतब नाम के दो असुर, उन्होंने, अब देखिए उस समय की टेक्नोलॉजी ऐसी कि मधु और कैतब ने ज्ञान चुरा लिया ब्रह्मा जी का, कहीं लिखित नहीं था, उनके मस्तिष्क से चुरा लिया, यहां के हार्ड ड्राइव से। ये इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो ब्रह्मा जी से जब ये मधु कैतब ने ज्ञान चुरा लिया जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, तो ब्रह्मा जी क्योंकि क्षत्रिय नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी ने असुरों से वो युद्ध नहीं कर पाए। जैसे ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं उनके अंदर वो क्षत्रिय भाव नहीं होता है कि अगर मुझसे कोई चुरा लिया तो मैं बदला लेके उसको वापस लूंगा। तो ब्रह्मा जी फिर भगवान के पास गए, फिर भगवान उन्होंने मधु कैतब से वो उनका उनके साथ युद्ध कर ज्ञान वापस से ब्रह्मा जी को दिया। तो इसलिए यदि ब्रह्मा जी का उदाहरण अर्जुन को देते भगवान इन दोनों श्लोकों में, तो अर्जुन तुरंत क्या बोलते, तो ब्रह्मा जी ने भी तो युद्ध नहीं किया ना मधु कैतब जब आए थे, है ना। तो देखिए भगवान कितने बुद्धिमानी से राज ऋषि शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों श्लोकों में, राजा और अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय जो कि राज करता है, वो कैसे इस ज्ञान को लेकर ऋषियों से लेकर या ऋषियों का जीवन जीकर राज्य करे, उनका उदाहरण सीखो तुम। तुम ब्रह्मा जी के उदाहरण को मत लेना। किसका उदाहरण लेना? सूर्यदेव, मनु, इक्ष्वाकु इत्यादि। तो ये कारण राजऋषियों का नाम में उन्होंने ब्रह्मा जी का नाम नहीं लिया। अब महाराज इक्ष्वाकु, अब देखिए महाराज इक्ष्वाकु जिनके विषय में आपको याद है इनका नाम क्यों और कैसे मिला, छींक से, कि इन्हें किसी माता की जरूरत नहीं पड़ी, इनके पिता के वीर्य से डायरेक्टली उत्पन्न हुए, रज की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये महाराज इक्ष्वाकु ये ऐसे धार्मिक राजा, ऐसे राजऋषि महाराज इक्ष्वाकु, कि महाराज इक्ष्वाकु से अन्य प्रांत के राजा युद्ध करने आते जबकि कोई जरूरत नहीं थी, महाराज इक्ष्वाकु के कोई शत्रु नहीं थे उसके उनके जमाने में, लेकिन फिर भी युद्ध करने आते। क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि महाराज इक्ष्वाकु के हाथ यदि हम मरेंगे तो हमको वैकुंठ मिलेगा। तो सोचो वो जो सुअर की कथा हमने ली थी कि वो जो शिकार के लिए गए थे महाराज इक्ष्वाकु अपने पत्नी के साथ, जो तो सुअर का पूरा परिवार सामने आया कि हमको मारो, हम पर शिकार करो। क्यों? क्योंकि आप जैसे धार्मिक राजा यदि आप हमें रणभूमि पर मारेंगे तो हमारी सदगति होगी। तो सोचो कि जो रणभूमि पर महाराज इक्ष्वाकु के हाथ से मारे जाने के बाद सदगति प्राप्त होती है, तो महाराज इक्ष्वाकु कितने बड़े धार्मिक व्यक्ति। तो भगवद गीता में ऐसे ही इनका नाम भगवान ने नहीं लिया, इनके अंदर ऐसे गुण थे जिनके वजह से भगवान के श्रीमुख से, भगवान के लेक्चर में इनका एग्जाम्पल आ रहा है। ऐसे जैसे बोलते हैं, नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी विल कम इन द भगवद गीता एज एन एग्जाम्पल स्पोकन बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ओनली पर्सनैलिटीज लाइक महाराज इक्ष्वाकु, सूर्यदेव एक्सेट्रा। अब ये जो मुद्दा राज ऋषि का मुद्दा, ये भगवान ने एक और कारण क्या था कि अर्जुन को कह रहे हैं, शासन के अधिकारियों के लिए गीता का संदेश अत्यंत आवश्यक है। अब हम द्वापर युग से पहुंचेंगे 2014 कलयुग में, कि आजकल की स्थिति क्या है सब जानते हैं, राजकरण क्या चल रहा है और क्यों है। अब देखिए श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक को कितनी महत्वपूर्ण इसको समझा और इसको कितनी महत्ता दी। महात्मा गांधी को श्रील प्रभुपाद ने लेटर लिखा कि आपका इन्फ्लुएंस, यू आर द फादर ऑफ द नेशन, आपका इन्फ्लुएंस पूरे देश के ऊपर इतना है, आप क्यों नहीं इस पूरे देश का जो शासन है उसको भगवत गीता के आधार पर सिखाते हो और जीते हो। वो चिट्ठी श्रील प्रभुपाद की महात्मा गांधी तक पहुंचने ही नहीं दी। महात्मा गांधी, श्रील प्रभुपाद उसके पश्चात इंदिरा गांधी से मिले और इंदिरा गांधी को श्रील प्रभुपाद ने कहा कि सांसद के सदस्य, पार्लियामेंट के सदस्य कौन कैसे होने चाहिए, यार उसकी हम चर्चा करेंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि भारत, ये जो हमारा देश जिसके अंदर इतनी समृद्धि, भौतिक रूप से इतनी समृद्धि, और लुटेरों ने इतने वर्षों तक अलग अलग प्रकार के जो लुटेरे आकर जो लूट कर गए, इतनी समृद्धि लूटने की उन्होंने कोशिश की, और केवल उन्होंने समृद्धि लूटी नहीं, समृद्धि लूटने के साथ साथ उन्होंने जो विकृति दे दी हमारे अंदर, एक है संस्कृति और एक है विकृति। जैसे अंग्रेज यहां पर आए, और हमने इसकी चर्चा पहले बहुत दफा की है कि अंग्रेज यहां पर हम पर शासन नहीं कर पा रहे थे, कब तक, जब तक कि उन्होंने हमारे आध्यात्मिक नींव को नहीं हिलाया। इसलिए वो लॉर्ड मैकॉले ने जो कहा, वी कैन नेवर रूल ओवर दीज इंडियंस अनलेस वी ब्रेक देयर स्पिरिचुअल कल्चर। ये गोमांस खाने वाला अंग्रेज, उसने पहचान लिया कि हमारी संस्कृति की ताकत क्या है, और वो भी ऐसा नहीं कि यहां वो बहुत सालों तक रहा, अपनी संस्कृति को पढ़ा, सीखा, अपने जीवन में उतारा, फिर उस वो निष्कर्ष पे आए, नहीं, कुछ समय बस वो मैकॉले और रॉबर्ट क्लाइव, वो लोग आकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर वो लोग कहते हैं कि हम इनके ऊपर कतई शासन नहीं कर पाएंगे, कब तक, जब तक कि हम इनके आध्यात्मिक जीवन को, उनकी संस्कृति को नहीं तोड़ें। और सबसे पहले जो उन्होंने नुस्खा निकाला तोड़ने का, वो गोहत्या शुरू करना है हमको। तो चीन ने आक्रमण किया, और उस समय की बात है कि जब चीन ने आक्रमण किया, उस समय के हमारे पहले प्रधानमंत्री, आप लोग वाकिफ होंगे, तो चीन ने आक्रमण किया और यह बताया गया है कि चीन ने आक्रमण कर 72,000 स्क्वायर मील भारत की जो भूमि है वो हड़प ली, 72,000 स्क्वायर माइल्स चीन ने हड़प ली। तो समय के एक बहुत ही प्रामाणिक सांसद थे महावीर त्यागी, तो पार्लियामेंट हाउस में हमारे पहले प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि एनीवेज दैट लैंड वॉज बैरन एंड एनीवेज नथिंग वॉज ग्रोइंग ऑन इट, सो व्हाट इज द लॉस। वैसे भी बंजर भूमि थी, कुछ उग नहीं रहा था उसके ऊपर, उन्होंने ले भी लिया तो क्या। तो महावीर त्यागी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा, माय डियर सर, योर हेड इज ऑल्सो बैरन, कुछ उग नहीं रहा आपके सर पे, वो भी काट के दे दो चीन को। जब भारत देश को आजादी मिली तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा, हमारे पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो आर्मी का चीफ कौन होना चाहिए, आर्मी का कमांडर चीफ कौन होना चाहिए, अंग्रेज होना चाहिए, क्योंकि हमको कैसे आर्मी को चलाना है हमको पता नहीं, क्योंकि इतने सालों तक वही चला रहे थे हमारा सब कुछ, तो इसलिए हमको आर्मी चीफ एक ब्रिटिशर को बनाना चाहिए. दैट वॉज हिज प्रपोजल दैट वी शुड गेट वन ब्रिटिशर टू बिकम द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो इन दैट मीटिंग देयर वर अदर इंडियन आर्मी मैन. सो वन लेफ्टिनेंट जनरल ही सेड, कैन आई से समथिंग, इफ योर प्रपोजल इज दैट वी आर नॉट ट्रेन्ड टू लुक आफ्टर द आर्मी, देयरफॉर वी शुड गेट अ ब्रिटिशर, सो वी वर नॉट ट्रेन्ड टू रूल द कंट्री ऑल्सो, सो हाउ कम यू आर द प्राइम मिनिस्टर, वी शुड गेट समवन फ्रॉम ब्रिटेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर. If your logic is, we are not trained to take care of the entire army, therefore we should get a Britisher from there. So that time then this Lieutenant General was asked, are you ready to take the responsibility to become the army chief? And look at the humility and the maturity of this Lieutenant General. He said, no, but my senior, whom I know very well, whom everyone knows, is the most suitable and eligible person to become the army chief. And he is General Kariyappa, the first army chief of our free India. Aur ye jo vyakti, Lieutenant General Nathu Singh Rathore, inhone hamare wo desh ke pratham pradhan mantri ko mukh pe kaha ki inko banao. तो ये कुछ ऐसे मेरे किस्से याद आ गए हमारे डिफेंस के. तो बात ये चल रही थी हमारी कि जब हम शासन की बात कर रहे हैं तो आजकल जो स्थिति है, हाँ, प्रभुपाद जब इंदिरा गांधी से मिले, मैं ये बोलना चाह रहा था, तो प्रभुपाद जब इंदिरा गांधी से मिले तो प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी को देखिए क्या प्रस्ताव रखा. रूपा ने इंदिरा गांधी से कहा कि जितने सांसद हैं, जितने एमपी एमएलए जितने हैं पार्लियामेंट हाउस में, रोज पार्लियामेंट हाउस की मीटिंग के पहले सभी अपना सोला माला कर कर आए. सभी ब्राह्मण दीक्षित होने चाहिए, सोला माला कर कर आए, चार नियम पालन करने चाहिए वो, कोई मांसाहार नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई नशा नहीं, कोई परस्त्री पुरुष गमन नहीं. ऐसा शुद्ध जीवन जीने वाले ये हमारे देश के नेता होने चाहिए. हरे कृष्ण. तो प्रभुपाद, देखिए प्रभुपाद भी कितने होपफुल थे, प्रभुपाद कितने होपफुल थे. तो आपको अभी हम कुछ दो वीडियो दिखाएंगे आजकल के पार्लियामेंट हाउस की स्थिति क्या है. प्रभुपाद क्या स्टैंडर्ड चाह रहे थे गीता के आधार पर, राजऋषियों की स्टैंडर्ड. हम आज श्लोक में चर्चा कर रहे हैं राजऋषि कौन होने चाहिए और आज की स्थिति क्या है. तो ये लाइव रिकॉर्डिंग है कि जहां पर उनको भगवद गीता के आधार पर हमारे देश को चलाना चाहिए क्या होता है. लाइट्स थोड़े बंद कर सकते हैं. नहीं लाइट बंद रहे तो ये अभी इसके बाद मैं एक आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो ये अभी इसके अगला वाला वीडियो जो है वो पूरे देश के अलग अलग पार्लियामेंट हाउस में क्या स्थिति है, सॉरी विश्व के, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्लियामेंट हाउस में क्या स्थिति है। तो एक नमूना कि कलयुग के जो हमारे शासक हैं, हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि राजऋषि जो हुए थे और कलयुग में राजऋषि होने के बजाय क्या स्थिति निर्माण कर दी है। तो यहां पर अलग अलग देशों में उनके पार्लियामेंट हाउस में स्थिति कहां से कहां जा रही है।
लातों का भी आजादाना इस्तेमाल किया।
तो बीच कट शॉट मिडवे एंड द केस ऑफ क्रिमिनल कोलिडा।
Guest Alberto Sami, accused of owing millions in taxes, crowds the table. The host steps back uneasy. First they're shoving, but then a sucker punch. Shocked crew members rush in to restore order. The men are separated. Tempers seem to cool. Then the fighting resumes. The host is barely able to stay on his feet. Still, he tries to counterattack. A man from the politician's side rushes in. There's a kick from behind. The host goes down. Again, he comes out swinging. It takes four crew members to finally restrain the host and end the brawl.
stood up to give her submission. One legislator pointed at her and shouted "thief, thief" in her native language. Pro and anti-ETA legislators shouted abuse at one another. Some clambered over tables to punch others. The committee hearing broke up in chaos and the House went into a closed-door session to figure out what to do next. ETA was hurried out by security staff. Nigeria consistently ranks as one of the world's most corrupt countries in a list drawn up every year by the independent watchdog Transparency International. Penny Tweedy, Reuters.
तो ये हाल है आजकल के नेता और भगवत गीता की चर्चा तो दूर की बात है, अपने जीवन में किसी श्रेष्ठ को पालन करना तो दूर की बात है। यहां पर तो मुझे लगता है कि हमारे कुत्ते भी शांति से कई बार बैठ जाते हैं धूप सेकते हुए, वहां पे रेती के ऊपर शांति से बैठ जाते हैं। वो लोग भी अगर देखे तो आश्चर्य करेंगे कि ये मनुष्य हैं, और कौन से मनुष्य हैं जिनको उत्तरदायित्व दिया है देश चलाने का। इनको देश चलाने का उत्तरदायित्व हमने दिया है, इसलिए प्रभुपाद जो इतना जोर दे रहे थे, और आज के श्लोक में जो भगवान ने कहा है इमम राजर्षयो विदु, कि ये जो ज्ञान है जब तक राजऋषि अपने जीवन में अपना कर दूसरों को नहीं देंगे, उसके आधार पर जब तक शासन नहीं करेंगे तब तक ये परंपरा नहीं बढ़ने वाली। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो, पूरे पांडव जो हैं वो क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रियों को ये गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतार कर जीना है और जन साधारण को सिखाना है। तो इसलिए हम राम राज्य की बातें करते हैं इस भारत भूमि में, परंतु रामचंद्र जी ने राम अपना स्वयं का राज्य किसके आधार पर स्थापित किया? उनके आदर्श, उनके स्वयं के आदर्श उदाहरण से उन्होंने ये राज्य स्थापित किया। इसलिए जब भरत प्रभु श्री राम से मिलने गए चित्रकूट, उनको फिर वापस अयोध्या ले जाने के लिए, तो रामचंद्र जी ने भरत को पूछा कि क्या महत्वपूर्ण है, मैं या मेरी नीतियां? हम दोनों में, मुझ में और मेरी नीतियों में, मी एंड माई पॉलिसीज, क्या महत्वपूर्ण है? हालांकि भरत कहे कि दोनों, रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, यदि मैं वहां पर शारीरिक रूप से मौजूद भी नहीं हूं परंतु मेरी नीतियां जो मेरे आदेश हैं वो तुम पारंपरिक तरीके से पालन करोगे तो राम राज्य मेरे बिना भी स्थापित करोगे। वो उन्होंने बहुत विस्तार से उन्होंने क्या राम राज्य होना चाहिए एक एक करके वो मुद्दे भरत को उन्होंने सुनाया। तो यहां पर हम भारत देश के निवासी, ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसे ऐसे अवतार यहां पर अवतरित होकर भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र, भगवान बुद्ध, इन्होंने आकर जो हमको अपने उदाहरण से सिखाया है कि क्या हमारे व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए, क्या सामाजिक पारिवारिक जीवन में, और पूरे देश पूरे राज्य को स्थापित करने के लिए, उसको उसका शासन करने के लिए कौन व्यक्ति उस पद पर होने चाहिए। इसलिए जब प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी से कहा कि पार्लियामेंट हाउस में कौन योग्य है जाने लायक, कौन? इस श्लोक के अनुसार प्रभुपाद ने कहा जो कि राज ऋषि हैं। तो हम कुछ राजऋषियों का उदाहरण समझने की कोशिश करें। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज इनके राज्य के विषय में बताया गया कि ये तो राजा बने भी नहीं थे तभी इनकी ख्याति इतनी फैली हुई थी। जब इनको वनवास मिला था पांडवों को, और उसमें से जो अंतिम वर्ष इनको अज्ञातवास में जीना था, तो दुर्योधन अब इतना ज्यादा भयभीत हो गया कि इस अज्ञातवास के पश्चात तो ये पांडव मुझे नहीं छोड़ने वाले। और अब जो नियम था कि अज्ञातवास में यदि पांडवों को मैं ढूंढ निकालूं, पहचान लूं कि हां ये हैं पांडव, तो फिर से 12 साल और, ये नियम था। तो एक साल पूरे पांडव अज्ञातवास में थे। तो दुर्योधन ढूंढ नहीं पा रहा कहां पर हैं ये पांडव, सारी शक्ति लगा ली उसने, नहीं ढूंढ पा रहा। तो भीष्म पितामह के पास दुर्योधन जाता है और भीष्म पितामह से पूछता है कि आपको तो अवश्य पता होगा कि पांडव कहां है। तो भीष्म पितामह उत्तर में कहते हैं दुर्योधन को कि दुर्योधन, तुझ जैसा अधर्मी मूर्ख वो अपनी कुत्सित बुद्धि से कभी नहीं देख पाएगा कि युधिष्ठिर कहां पर स्थित है या पांडव कहां पर स्थित है। मैं बताता हूं तुम्हें, बहुत सरल है, जो जिसकी बुद्धि सत्वगुणी है वो समझ पाएगा कि जिस देश में किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं हो रहा, जिस देश में खुशहाली है, हर प्रकार की समृद्धि है, जहां पर सभी धार्मिक है, धर्म का पालन कर रहे हैं, वो देश तो ढूंढ ले। और यदि वो देश तूने ढूंढ लिया तो वहां पर पांडव, इसे कहते हैं राजऋषि। पता कैसे लगेगा राजऋषि का? भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन को कि उस देश में जो लक्षण है धर्म के, धर्म के लक्षण उस देश में पालन हो रहे हैं, तो समझ में आएगा कि वहां पर राजऋषि शासन कर रहे हैं। और यदि वो लक्षण तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे तो तुम्हारे जैसा ही कोई शासन कर रहा होगा। तो ये राजऋषि युधिष्ठिर का उदाहरण। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज जिनके पश्चात फिर अब कलयुग शुरू हुआ, जो कुरुवंश के अंतिम राजऋषि हुए परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज, श्रीमद् भागवत में कथा है कि मूर्तिमान कली, परीक्षित महाराज के राज्य में अब तक कलयुग शुरू नहीं हुआ था, परंतु मूर्तिमान कली अपना साम्राज्य फैलाने के लिए, स्थापित करने के लिए उसने अधार्मिक कार्य, कुकर्म प्रारंभ कर दिए, गोहत्या इत्यादि। तो परीक्षित महाराज तुरंत एक राजऋषि होने के नाते उन्होंने उसे वहीं पर दंडित किया और उसे कहा कि तेरा राज्य वहां पर होगा जहां पर सब नियम तोड़े जाएंगे, ये मांसाहार, जुआ इत्यादि, नशा। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके राज्य में तो ये होता ही नहीं। अब देखिए परीक्षित महाराज का राज्य, उनके अंडर उनका गवर्नेंस क्या था कि उनके गवर्नेंस में न तो कोई मांसाहार, न कोई नशा, न कोई जुआ, न कोई परस्त्री गमन, ये सब कुछ भी नहीं, कहीं दूर दूर तक देखने के लिए नहीं। तो मूर्तिमान कली ने कहा कि भाई ये सब तो आपके राज्य में है नहीं, तो मेरे को क्या निवास स्थान। तो फिर परीक्षित महाराज ने, क्योंकि वो उनके भी राजा थे, तो उनको दया उसके ऊपर करते हुए कहा कि जहां पर लोग धन संपत्ति इकट्ठा कर कर रखेंगे कली, तू वहां निवास करेगा। और ये वीडियोस में हमने देखा कि किसके लिए लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, किस लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, उसी के लिए। इसके लिए कैसे मैं ऐंठ लूं जितना धन हो सके, पूरे देश का मैं ले लूं अपने अपने पास, और उसके पहले ही मर रहे हैं, मरने के बाद तो कुछ लेके जाने वाले हैं नहीं, कुछ मिलने वाला है नहीं। क्या कर रहे हैं कि स्वयं कली का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने जीवन में भी मूर्तिमान कली को सब जगह पर रख रहे हैं। तो ये उदाहरण राजऋषि परीक्षित का। महाभारत में इनके विषय में बताया गया है, उपरिचर ये चेदी देश के राजऋषि हुए, और इनके राज्य के विषय में बताया गया है कि इनके राज्य में कोई भी घर पर ताला नहीं लगाता था, सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत ही नहीं थी। सभी इतने धार्मिक थे कि कोई अपने घरों के आगे, मतलब आजकल देखो सिक्योरिटी ये जो सिस्टम्स हैं कितना इसका बिजनेस चल रहा है, सब जगह देखो, कोई वॉचमैन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी है, वॉचमैन यहां वहां घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि चोर उच्चक के इतने घूम रहे हैं, तो क्योंकि चोर उच्चक के इतने घूम रहे हैं इसलिए इनका बिजनेस इतना चल रहा है। तो इनके राज्य में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति ना तो कभी झूठ बोलता, ना उसके मन में कभी कोई अधार्मिक कार्य करने की इच्छा भी होती। ऐसे ये राजऋषि थे। इसके पश्चात शांतनु, इनके विषय में बताया गया है कि ये ऐसे राजा कि अन्य जितने राजा थे, पूरे विश्व के जितने राजा थे, उन्होंने राजऋषि शांतनु को कहा कि आप हमारे पूरे पूरी जो सृष्टि है पूरे ब्रह्मांड का आप राजा बनो। तो वो उनको पद दिया गया उनके गुणों के वजह से। और ये उदाहरण है राजऋषि चंद्रहास, चंदनावती, और इनके विषय में बताया गया है कि ये जब राज्य करते थे तो ये एक ऐसे राजऋषि कि लोग दूसरे प्रांतों से इनके नागरिक बनने के इतने इच्छुक होते थे, क्योंकि चंदनावती में जो भी नागरिक अपना शरीर त्यागता था वो तुरंत वैकुंठ प्राप्त करता था। और कौन कारण कौन उनके? ये राजा। तो इनके सबकी विस्तार से कथा दी गई है अलग अलग शास्त्रों में, पुराणों में। तो कुछ इनके उदाहरण कि ऐसे ऐसे राजऋषि, हमको तो इनके विषय में सुनकर आश्चर्य होता है कि ऐसे भी थे। और वो लोग ये वीडियो देख लें यदि, हमको ज्यादा अचरज नहीं हुआ होगा ये वीडियो देखकर, क्योंकि टीवी पर आए दिन यही चल रहा है, तो हमको ज्यादा आश्चर्य भी नहीं होगा कि उसमें क्या हो, तो कुत्ते बिल्लियों की तरह ऐसे भी लड़ते रहते हैं। तो इसलिए हमको आश्चर्य किसमें होता है कि कोई ऐसा राजा जिसके राज्य में कोई सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत नहीं, ताला चाबी की जरूरत नहीं, जो कभी राज्य में कोई व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता हो, चंदनावती के जो राजा, इनके राज्य में हर एक व्यक्ति एकादशी का पालन करता निर्जला, और जो भी उनके राज्य में उसने शरीर त्यागा वैकुंठ धाम प्राप्त होता था। तो ये थे राजऋषि। भगवान ने आगे कहा, सकाले ने हमहता योगो नष्ट परंतप, काल के प्रभाव से यह ज्ञान नष्ट हो गया, काल के प्रभाव से। तो अब ये जानना महत्वपूर्ण है कि भगवान का दिया हुआ ज्ञान नष्ट कैसे हो सकता है। प्रश्न कोई व्यक्ति ये पूछ सकता है कि भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान नष्ट कैसे हो सकता है। तो हालांकि ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये सब्जेक्ट मैटर अपने आप में थोड़ा विस्तार से समझने लायक है, और मैं घड़ी की ओर देख रहा हूं कि 9:35 होने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हम अगले बुधवार को यहां से शुरुआत करते हुए फिर हम हो सके तो अगला श्लोक भी लेंगे, परंतु मैं चाहता हूं कि ये श्लोक पर हम गौर करते हुए थोड़ा विस्तार से चर्चा कर विचार विमर्श करें, केवल चर्चा नहीं विचार विमर्श करें कि हमें किसे देश का नेता बनाना चाहिए, है ना? चल रहे ना आजकल सबकी चर्चाएं कि हमें किसे देश का नेता बनाना चाहिए, किसे बनाना चाहिए? आज के श्लोक में बताया गया है कि जिसने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से सुने हुए प्रामाणिक गुरुजन श्रेष्ठ व्यक्तियों से पारंपरिक ये दिव्य ज्ञान लिया है, वो राजा जो राजऋषि कहलाते हैं वो योग्य हैं शासन के पद पर, अधिकारी के पद पर जाने के। तो इसका हम भाग दो, हालांकि मेरा प्लान पूरा लेने का था, परंतु कुछ मुद्दे ऐसे आ गए, तो इसलिए हम अगले बुधवार को सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप, इसकी चर्चा से प्रारंभ करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय।